महिलाएं जानती हैं कि सेक्स उनका हक है, लेकिन मर्दों को कैसे समझाएं? सेक्स को लेकर देश में तमाम गलतफहमियां हैं, इसीलिए इसमें नीम हकीमी भी खूब चलती है। 75 साल के सेक्सोलॉजिस्ट प्रकाश कोठारी ने हजारों लोगों को नीम हकीमों से बचाया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वक्त के साथ सेक्स को लेकर लोगों की सोच बदल रही है, कैसे आज के युवा इसमें नए प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश कोठारी से बात की राजेश मित्तल ने। डॉक्टर प्रकाश कोठारी का जैसा नाम है वैसा ही काम। उन्होंने ऐसे हजारों लोगों को वह रोशन राह दिखाई है जो सेक्स समस्याओं के अंधेरे में जिंदगी काट रहे थे। सेक्स थेरेपी में देश में उनके कद का शायद ही कोई दूसरा डॉक्टर है। विदेश में भी उनकी शोहरत है। मुंबई के मशहूर KEM अस्पताल में वह 55,000 से ज्यादा मरीज देख चुके हैं। किसी सरकारी अस्पताल की OPD में सेक्स समस्याएं सुलझाने का यह शायद पहला प्रयोग था। वह 1970 से सेक्स प्रॉब्लम्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर कोठारी कहते हैं कि जब उन्होंने सेक्स समस्याओं का इलाज करना शुरू किया था, तब से लेकर आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। 1970 के दशक में पुरुष अपनी समस्या लेकर अकेले आते थे। जब उन्होंने इलाज शुरू किया तो पहले 4 साल में एक भी महिला उनके पास नहीं आई। आज औरतें अपने पतियों को साथ लेकर आती हैं। वे पति की समस्याओं की जानकारी फोन पर भी देती हैं। वे समझ गई हैं कि सेक्स उनका बुनियादी हक है, लेकिन मर्दों को अभी तक यह बात समझ में नहीं आई है। पुरुषों में सेक्स समस्या अधिक। सेक्स समस्या पुरुषों में अधिक होती है या महिलाओं में? डॉक्टर कोठारी के अनुसार ऐसी समस्याएं ज्यादातर मर्दों में होती हैं। खासतौर पर उन्हें उत्तेजना संबंधी दिक्कत होती है। औरतों की भी समस्याएं हैं। वे चरम सुख पर पहुंचने संबंधित समस्याएं लेकर आती हैं। उनके पास 70% पुरुष और 30% महिला पेशेंट आते हैं। डॉक्टर कोठारी ने यह भी बताया कि आज सेक्स को लेकर प्रयोग बढ़ गया है। एक बदलाव यह भी आया है कि 60 से 65 साल के जो नॉर्मल पुरुष हैं, वे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा उपाय बताइए कि मेरी सेक्सुअल पावर 10-15 साल और बरकरार रहे। पहले कभी उनके पास ऐसे मरीज नहीं आते थे। 45 साल से अधिक उम्र की महिलाएं अक्सर ये जानने आती हैं कि सहवास दर्द भरा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। खुलापन बढ़ा है। डॉक्टर कोठारी एक और बदलाव का भी जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि लोगों में सेक्स को लेकर खुलापन आ गया है। पहले लोग गुपचुप रहते थे, अपनी समस्या छुपाते थे या बता नहीं पाते थे। उन्हें इसके लिए सही शब्द नहीं मिलते थे। मीडिया और इंटरनेट की मदद से लोगों की जानकारी बढ़ी है। अब लोग खुलकर अपनी समस्या बताते हैं। अब कई डॉक्टर्स भी इसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर रहे हैं। पहले तो सेक्सोलॉजिस्ट का नाम लेने से भी लोग कतराते थे। डॉक्टर कोठारी ने अफसोस के साथ यह भी बताया कि इसके बावजूद सेक्स वर्जित यानी टैबू सब्जेक्ट बना हुआ है। यह भी सच है कि पहले की तुलना में यह कम हुआ है। क्या वक्त के साथ सेक्स समस्याएं भी बदली हैं? डॉक्टर कोठारी ने बताया कि 99% समस्याएं वही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप आज भी वही हस्तमैथुन, स्वप्नदोष, शीघ्र पतन और कमजोरी पर अटके हैं। सच्चाई यही है कि आज भी मेरे पास जो मरीज आते हैं और ईमेल से जो ढेरों सवाल आते हैं, उनमें इन्हीं 4 समस्याओं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इनके बारे में हमारे समाज में गलतफहमियां गहरे धसी हुई हैं। मेस्टर्बेशन से कमजोरी का वहम। डॉक्टर कोठारी ने कहा, जब मैं MBBS के फाइनल ईयर में था तो खुद मेरे मन में हस्तमैथुन यानी मेस्टर्बेशन से कमजोरी का वहम था। मुझे भी इससे निकलने में 10 साल लग गए। इस फील्ड में आने की वजह भी यह थी कि जैसे मेरी गलतफहमी दूर हुई है, वैसे ही दूसरों की भी इस गलतफहमी को मैं दूर कर सकूं। उन्होंने बताया, 20-21 साल की उम्र में मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था, तब मेस्टर्बेशन से जुड़ी गलतफहमियों का शिकार होकर परेशान रहने लगा था। फिर मैं एक हकीम और कथित सेक्स एक्सपर्ट से मिला। इनमें से एक का इश्तेहार पढ़कर मैं मुंबई से दिल्ली के एक दवाखाने तक भी गया। इत्तेफाक की बात है कि मेरी कहानी सुनने और पूरी तरह शारीरिक जांच के बाद इन दोनों ने एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने बचपन में काफी मेस्टर्बेशन किया है? मुझे उस वक्त इन पर पूरा भरोसा हो गया कि इन्होंने मेरी बीमारी की जड़ पकड़ ली है। उसके बाद उन्होंने दवाओं की शाही, बादशाही और आलमशाही हर तरह की कीमत वाले कोर्स बताए। डॉक्टर कोठारी ने कहा, कि तब मेरे पास अधिक पैसे नहीं होते थे, इसीलिए मैंने सस्ता इलाज चुना, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने कहा। इसके बाद जब मैंने उनसे कोई असर नहीं होने की बात कही तो उन्होंने मर्ज पुराना बताते हुए महंगे इलाज की सलाह दे डाली। उस कोर्स से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे वाले एक्सपर्ट को आजमाया, उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला। तब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई के फाइनल ईयर में था, मुंबई के KEM अस्पताल में पढ़ाई कर रहा था। वहां मेरे जैसे कई मरीज भी आते थे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। मैस्टरबेशन पर आयुर्वेद क्या कहता है, उन्होंने बताया। तब मैंने अपने जैसे मरीजों के लिए आयुर्वेद के मूल ग्रंथों चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय का अध्ययन किया। हैरानी की बात यह थी कि आयुर्वेद के इन तीनों महाग्रंथों में न तो मैस्टरबेशन को बीमारी बताया गया है और न ही इसके लिए किसी तरह के इलाज की चर्चा है। यहाँ तक कि वात्स्यायन के कामसूत्र में भी इसे बीमारी नहीं माना गया। शुरू में मेरे पास जो भी मरीज आए, मैं उनको दिलासा देता था कि मैस्टरबेशन नॉर्मल है, इसे बीमारी न समझें और कोई फिक्र न करें। डॉक्टर कोठारी ने देखा कि इन बातों का मरीजों पर असर नहीं हो रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि लोगों के दिमाग में इसे लेकर कम उम्र से ही गलतफहमी थी। इसके बाद उन्होंने इलाज का तरीका बदला। वह मरीजों से कहने लगे, सहवास के दौरान जो काम इंद्रिय स्त्री के प्राइवेट पार्ट में करती है, वही काम मैस्टरबेशन के दौरान इंद्रिय मुट्ठी में करती है। जैसे सहवास करने से कोई समस्या नहीं होती, ठीक उसी तरह मैस्टरबेशन से भी कोई समस्या नहीं होती। जैसे सहवास करने से इंद्रिय छोटी नहीं होती, उसी तरह मैस्टरबेशन से भी यह छोटी नहीं होती। जैसे सहवास से टेढ़ापन नहीं आता, वैसे ही मैस्टरबेशन करने से भी इंद्रिय में टेढ़ापन नहीं आता। ढीलेपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस्तेमाल करने से तो मजबूती आती है, बिना इस्तेमाल के नहीं। यह तरीका काम कर गया, मरीजों की हीन भावना और गलतफहमी दूर होने लगी। सिर्फ चार सवाल पूछकर इलाज। 1973-75 में डॉक्टर कोठारी अमेरिका गए। वहां उन्होंने मास्टर्स एंड जॉनसन के मार्गदर्शन में वर्कशॉप की। उन्होंने बताया, मैंने शुरुआत में सेक्स थेरेपी में उनके मॉडल को अपनाया, फिर हार्टमैन एंड फिथियन और फिर हेलेन कैपलन के मॉडल को अपनाया, लेकिन मुझे ये मॉडल भी जरूरत से ज्यादा लंबे लगे, तो मैंने अपने तजुर्बे से नया मॉडल बनाया। मैं सिर्फ चार सवाल पूछकर इलाज तय करता हूँ। पुरुषों से पूछता हूँ, ख्वाहिश, इंद्रिय में तनाव, प्रवेश करने की क्षमता और चरम सुख। महिलाओं से ख्वाहिश, प्राइवेट पार्ट में गीलापन, प्रवेश का अनुभव और चरम सुख। यह मेरा खुद का मॉडल है, जिसे आज दूसरे सेक्सोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह एक मरीज के साथ चार बार बैठते हैं। हर बार वह 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत करते हैं। पहली सिटिंग में वह मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, दूसरे में उसे बीमारी की जानकारी देते हैं, सेक्स से जुड़ी उसकी गलतफहमियां दूर करते हैं, तीसरी सिटिंग में शारीरिक जांच और चौथी में इलाज करते हैं। डॉक्टर कोठारी दो तरह के इलाज बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं फौरी इलाज के तौर पर एलोपैथिक दवाएं बताता हूं, ताकि हफ्ते भर में उसे आराम आ जाए। लंबे और पक्के इलाज के तौर पर मरीज को रूटीन में कुछ जरूरी बदलाव करने की सलाह देता हूं, जैसे खाना क्या और कैसे खाएं, क्या पिएं, कौन से आसन प्राणायाम करें। उसे बताता हूं कि अगर वह सब लगातार करेगा तो 6-8 महीने बाद दवा लेने की जरूरत नहीं रहेगी या दवा की जरूरत कम हो जाएगी। मैं अपने हर मरीज को 5 साल तक फॉलो करता हूं कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं मरीज मेरे इलाज से असंतुष्ट होकर किसी दूसरे डॉक्टर के पास तो नहीं चला गया। किस्मत से अभी तक ऐसा कोई मरीज सामने नहीं आया है। मैं मरीज को उसके मर्ज का डॉक्टर बना देता हूं, ताकि वह मुझ पर निर्भर न रहे। नामर्दगी का पता लगाने वाली मशीन। आपका इलाज महंगा होने के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं हो गया है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैंने 65 साल की उम्र तक मुंबई की KEM अस्पताल में फ्री में इलाज किया। अब भी कोई जगह मुहैया कराए तो मुफ्त में मरीज देखने को तैयार हूं। वक्त के साथ सेक्स संबंधी समस्याओं के इलाज में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। डॉक्टर कोठारी ने बताया कि आदमी नामर्द है या मर्द, इसका 100% टेस्ट हो सकता है। NPTR नाम की मशीन से यह काम हो सकता है। उन्होंने बताया कि रात में आदमी सो जाए तो उसके इंद्रिय के आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से में रबड़ जैसे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। हर मर्द को रात में 2-3 बार इरेक्शन होता है। इरेक्शन की स्ट्रेंथ और कितने समय तक वह रहा, इस मशीन में यह ब्यौरा दर्ज हो जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि नामर्दगी की वजह शारीरिक है कि नहीं। इस टेस्ट की मान्यता अदालतों में भी है। शीघ्र स्खलन को रोकने के लिए आज कई दवाएं आ गई हैं। आयुर्वेद में इसके लिए सिर्फ अफीम का इस्तेमाल बताया गया है, जिससे बाद में नुकसान होता है, इससे नामर्दगी भी आ सकती है। 1600 साल पहले लिखा गया कामसूत्र। डॉक्टर कोठारी उम्र के इस पड़ाव में अपने काम से संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया, कई लोगों की रातें मेरे दिन के काम से तय होती हैं। उन्होंने कहा, मैंने चरम सुख यानी क्लाइमेक्स का क्लासिफिकेशन किया, मैंने सेक्स से जुड़ी बीमारियों का नामकरण किया। इससे पहले दुनिया की औरतों की चरम सुख की समस्याओं के लिए कोई शब्दावली नहीं थी। मर्द हो या औरत, चरम सुख की समस्या इन चार में से किसी एक तरह की होगी। चरम सुख पर जल्दी पहुंच जाना, देर से पहुंचना, चरम सुख कम आना, चरम सुख बिल्कुल न आना। डॉक्टर कोठारी ने इसके अलावा कामसूत्र पर रिसर्च करके साबित किया कि इसे महर्षि वात्स्यायन ने 350 से 375 ईस्वी यानी 1600 साल पहले लिखा था। आधुनिक यौन विज्ञान आज जो बातें रिसर्च करके बता रहा है, उनमें से कई बातें कामसूत्र में तब लिख दी गई थी। इसी काम के लिए 2002 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने सेक्स के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाई। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोगों को थात जागने की बीमारी होती है। यह दरअसल मानसिक बीमारी है। इसके लिए बहुत सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। डॉक्टर कोठारी ने साबित किया कि यह समस्या शौच से जुड़ी है। उन्होंने कहा, मैंने साबित किया कि यह समस्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों में है। हमारे यहाँ लोग उकड़ू अवस्था में बैठते हैं और मलमूत्र को देखते हैं। विदेशों में लोग कमोट पर बैठते हैं और देखते ही नहीं। जिसने देखा वह फंस गया और जिसने नहीं देखा वह बच गया। इस बीमारी से निजात के लिए लोग काफी दवाइयां लिखते थे, लेकिन मैंने इससे लोगों को समझा बुझाकर निजात दिलाई। ज्यादातर सेक्स टॉनिक फिजूल। डॉक्टर कोठारी ने यह भी कहा, पुरुषों की सेक्स समस्याओं के लिए आजकल बाजार में मिलने वाली ढेरों आयुर्वेदिक दवाएं और सेक्स टॉनिक्स किसी काम की नहीं। ये बुनियादी आयुर्वेदिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। मिसाल के तौर पर महर्षि चरक को लें। चरक संहिता में उनका कहना है कि आज अगर आप पत्ता तोड़ो तो 6 महीने बाद उसका असर कम होना शुरू हो जाता है और 2 साल में लगभग खत्म हो जाता है। डॉक्टर कोठारी ने कहा, मैंने आज तक कोई कंपनी नहीं देखी जिसने पौधा कब तोड़ा था ऐसा कहीं दवा की पैकिंग पर लिखा हो। और जब पत्ते तोड़ोगे, उन्हें साफ करोगे, उन्हें धोगे, पीसोगे, बोतल में डालोगे, फिर वह डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और फिर आखिर में केमिस्ट की दुकान पर आएगा। इस तरह 1 साल हो जाता है। ऐसे में मुझे इस दवा पर शक होता है कि वह असर कैसे करेगी। दक्षिण में एक बेहद मशहूर आयुर्वेदाचार्य वाग्भट हुए थे। उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में लिखा है कि जैसे आप मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ा सकते, उसी तरह से आपको कोई हर्बल सेक्स टॉनिक देना हो तो उसके पहले आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धिकरण के लिए उन्होंने पंचकर्म बताया था। आजकल आयुर्वेदिक दवाएं देने से पहले एक जुलाब तक नहीं लेने की सलाह दी जाती। पंचकर्म यानी वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्त, मोक्षण, इन पांचों में किसी एक की भी सलाह देना तो दूर की बात है। आयुर्वेद के मुताबिक शरीर में वात, पित्त और कफ का बराबर संतुलन होना चाहिए। इनमें असंतुलन हो तो कोई भी बीमारी हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको दवा देनी हो तो आदमी की प्रकृति और विकृति जानने के बाद ही दवा देनी चाहिए, नहीं तो वह दवा सांप के डंक जितनी जहरीली और बिजली जितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए बाजार में मिलने वाली ज्यादातर दवाओं से फायदा तो दूर की बात, इनसे बुरा असर पड़ रहा है। आयुर्वेदिक दवा के साइड इफेक्ट्स। उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता, यह गलत है। सेक्स टॉनिक के तौर पर आजकल स्वर्ण भस्म खूब बेची जा रही है, जो आमतौर पर शास्त्रीय तरीके से नहीं बनती। आज के जमाने में जब किसी शख्स को सामान्य भोजन को पचाने में ही कई तरह की मुश्किलें आती हैं, तो जाहिर है उसे स्वर्ण को पचाने में ज्यादा दिक्कत आएगी। हैवी मेटल होने की वजह से स्वर्ण भस्म का शरीर के अंगों से फिल्टर और बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसका गुर्दों और शरीर के दूसरे अंगों पर बुरा असर पड़ता है। आप देखेंगे कि हमारे ज्यादातर सेक्स टॉनिकों की पैकिंग के ऊपर घोड़े और सांड के चित्र होते हैं। हकीकत में जो असर होता है वह उस दवा का नहीं बल्कि उस घोड़े और सांड के चित्र का होता है। तथाकथित डॉक्टर जब सेक्स टॉनिक का इंजेक्शन देता है तो सिरिंज भोंकने का असर होता है, दवा का नहीं। शिलाजीत के तो फायदे हैं। इस पर उन्होंने बताया कि यह लंबे समय के सेवन के बाद फायदा करती है। शिलाजीत की पहचान मुश्किल। सुनते हैं पुराने जमाने में जो वैद्य राजे थे उन्हें जब बीमारी का पता नहीं चलता था तब वह कॉमन दवा के रूप में इसकी सलाह दे देते थे। असली शिलाजीत को आज पहचानना मुश्किल हो गया है। जापानी तेल को भी इसी तरह से ऐसे मामलों में फायदेमंद बताया गया है। इस पर डॉक्टर कोठारी ने कहा, इस तेल की मालिश से शायद हाथ मजबूत हो जाए लेकिन प्राइवेट पार्ट मजबूत नहीं होगा। उन्होंने वैक्यूम पंप के इस्तेमाल को लेकर भी आगाह किया। डॉक्टर कोठारी ने बताया कि इसके सलाह से साइज बढ़ने की बात बिल्कुल गलत है। लिंग का साइज बढ़ घट नहीं सकता। 18 साल की उम्र के बाद अगर कोई कहता है कि मैं साइज बढ़ा सकता हूँ तो वह गलत है। बेसिक बात यह है कि साइज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, जितना लंबा उतना बेहतर सेक्स, यह गलतफहमी है। बच्चे पैदा करने के लिए भी स्पर्म की जरूरत होती है जिसका लिंग की लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल स्त्रियों के प्राइवेट पार्ट की लंबाई लगभग 6 इंच होती है। इसमें से आगे के 1/3 यानी 2 इंच हिस्से में ही संवेदना होती है, बाकी अंदर का 4 इंच हिस्सा संवेदना रहित होता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पुरुष के प्राइवेट पार्ट की लंबाई अगर उत्तेजित अवस्था में 2 इंच या उससे ज्यादा है तो उसके पार्टनर की संतुष्टि के लिए यही काफी है। डॉक्टर कोठारी ने सफेद मुसली के बारे में भी दिलचस्प जानकारी दी, जिसे जिनसिंग भी कहा जाता है। उन्होंने बताया, इसे चीन वाले बनाते हैं लेकिन खुद नहीं खाते, वे इसे जापानियों को बेचते हैं। इसी तरह सफेद मुसली केरल वाले बनाते हैं लेकिन खाते नहीं, इसे वे पंजाब और उत्तर भारत के दूसरे प्रदेशों में बेचते हैं। डॉक्टर कोठारी ने कहा, उन्होंने कभी इस पर रिसर्च नहीं की है इसलिए वह इसके फायदों की जानकारी नहीं दे सकते। उन्होंने बताया कि इरेक्शन के लिए वायाग्रा का मुकाबला कोई दवा नहीं कर सकती। ऐसे बढ़ेगा तनाव। प्राइवेट पार्ट में तनाव बढ़ाने के लिए डॉक्टर कोठारी अक्सर देसी वायाग्रा की सलाह देते हैं, लेकिन क्या यह गलत नहीं है कि दवा लो, मजा करो, बाद में शरीर चाहे खराब हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। मान लें किसी को ब्लड प्रेशर है, दवा देने से वह कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि वह पहले आउट ऑफ कंट्रोल था। कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उसे ठीक किया ही जाएगा। वायाग्रा किसी किसी को सरदर्द, एसिडिटी जैसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स दे सकती है, लेकिन कोई जानलेवा साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, यह गोली 24 घंटे में एक बार ही लेनी चाहिए, और अगर कोई शख्स बीपी की नाइट्रेट युक्त गोली ले रहा हो तो वह वायाग्रा न ले।